एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे उपन्यास में जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा युग लगता है, सलमान रुश्दी का शाहकार मिडनाइट्स चिल्ड्रन।
हाँ, और क्या कमाल का इत्तेफाक है कि रुश्दी का जन्म भी बॉम्बे में हुआ 1947 में,
ठीक उसी साल जब भारत आजाद हुआ।
बिल्कुल, और ये संयोग ही आप कह सकते हैं इस उपन्यास की आत्मा बन गया है।
सही बात है। रुश्दी को उत्तर औपनिवेशिक दौर के, मतलब उस समय के जब देश गुलामी से निकल रहे थे,
हाँ, अपनी नई पहचान बना रहे थे,
तो उन्हें उस दौर के सबसे अहम लेखकों में गिना जाता है।
और देखिए, इस उपन्यास ने तो आते ही धूम मचा दी थी, 1981 में बुकर प्राइज।
हाँ, और फिर बाद में इसे बुकर ऑफ बुकर्स भी चुना गया।
हाँ, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मतलब पिछले 25 सालों का सर्वश्रेष्ठ बुकर।
जबरदस्त। और इसकी वजह शायद ये है कि ये महज एक ऐतिहासिक कहानी भर
नहीं
है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जादुई यथार्थवाद और एक बड़े मतलब विशाल ऐतिहासिक कैनवस का गजब का मिश्रण है।
इसमें भारत का बंटवारा है, आजादी के बाद के वो उथल पुथल वाले साल,
हाँ, एक नए मुल्क के बनने की उम्मीदें, तकलीफें, सब कुछ है इसमें।
और रुश्दी की वो खास, क्या कहते हैं, चटनीफाइड भाषा शैली।
हाँ हाँ, वो चटनीफाइड, जैसे चटनी में कई सारे स्वाद घुल मिल जाते हैं ना,
बिल्कुल
वैसे ही रुश्दी की अंग्रेजी में पूर्वी और पश्चिमी अंदाज, हिंदी उर्दू के शब्द, बॉम्बे की बोलचाल, सब कुछ।
ये उस दौर के मिले जुले उलझे हुए अनुभव को पकड़ने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है ना।
बिल्कुल सही।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस जटिल और शानदार उपन्यास की कहानी की परतें खोलें, किरदारों को समझें
और उन गहरे सवालों पर भी गौर करें जो रुश्दी उठाते हैं।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं उस जादुई रात से।
कहानी की धुरी है सलीम सिनाई,
नायक।
उसका जन्म होता है 15 अगस्त 1947 को,
ठीक आधी रात के स्ट्रोक पर।
हाँ बिल्कुल, जिस पल भारत आजाद होता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जैसे उसकी किस्मत नए नवेले हिंदुस्तान की किस्मत से जुड़ गई हो।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। सलीम को जल्द ही पता चलता है कि वो अकेला नहीं है।
हाँ, यहीं से तो वो जादू वाला हिस्सा शुरू होता है, ये आधी रात की संतानें।
वही पता चलता है कि आजादी के उस पहले घंटे में जितने भी बच्चे पैदा हुए, पूरे 1000।
हजार बच्चे?
हाँ, उन सबके पास कोई ना कोई अजीब गरीब जादुई ताकत है। और सलीम, सलीम अपनी उस बेहद बड़ी और संवेदनशील नाक के जरिए,
वो मशहूर नाक,
हाँ, उस नाक से वो इन सब बच्चों के दिमाग से जुड़ सकता है, जैसे कोई कोई टेलीपैथिक टेलीफोन एक्सचेंज हो।
कमाल है।
और ये सारे बच्चे मिलकर एक तरह से नए भारत की उम्मीदों, उसकी ताकतों, कमजोरियों, सारी संभावनाओं का प्रतीक बन जाते हैं।
क्या गजब की कल्पना है, एक पूरी पीढ़ी जिसके पास जादुई शक्तियां हैं और सलीम उनका सूत्रधार। लेकिन उपन्यास शुरू होता है तब सलीम कहाँ है, क्या कर रहा है वो?
जब हम उससे मिलते हैं, वो 30 साल का है और एक अचार की फैक्ट्री में काम कर रहा है।
अचार की फैक्ट्री?
हाँ, और अपनी प्रेमिका पद्मा को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना रहा है। लेकिन उसमें एक बेचैनी है, एक डर सा है।
डर? कैसा डर?
उसे लगता है कि उसका शरीर, मतलब इतिहास और यादों के वजन से, ठीक एक पुराने अचार के मर्तबान की तरह
दरक रहा है।
हाँ, जगह जगह से दरक रहा है, टूट रहा है। और ये दरकना भी आप देखें तो एक प्रतीक बन जाता है ना?
बिल्कुल, जैसे देश बंटवारे और दूसरी मुश्किलों से गुजरा, शायद सलीम का शरीर भी उसी बोझ को महसूस कर रहा है। लेकिन उसकी कहानी तो उसके जन्म से भी पहले शुरू होती है, उसके नाना से।
जी हाँ, कहानी की जड़ें जाती हैं सलीम के नाना डॉक्टर आदम अजीज तक, कश्मीर में।
अच्छा।
जर्मनी से डॉक्टरी पढ़कर लौटे हैं, लेकिन एक दिन नमाज पढ़ते हुए उनका सिर जमीन से टकराता है और उनके अंदर से मजहबी यकीन जैसे खत्म हो जाता है।
ओह।
उनके अंदर एक छेद रह जाता है। ये आस्था का खोना, परंपरा और आधुनिकता का तनाव, ये सब कहानी में बार बार आता है।
और उनका इश्क करने का तरीका भी, वो छेद वाली चादर वाला किस्सा।
हाँ हाँ, वही। वो अपनी होने वाली पत्नी नसीम गनी को सीधे नहीं देखते, एक चादर में बने छेद से उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों को देखते हैं।
ये तो बहुत ही अजीब है, लेकिन शक्तिशाली प्रतीक भी।
बिल्कुल, खंडित नजरिया, चीजों को टुकड़ों में देखना, पूरी सच्चाई कभी ना जान पाना, ये थीम पूरी कहानी में गूंजती है।
और फिर सलीम की माँ अमीना, उनकी शादी भी।
हाँ, उनकी शादी भी एक गलतफहमी के चलते अहमद सिनाई से होती है, मतलब किस्मत जैसे अपना खेल खेल रही है शुरू से ही।
और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सलीम के जन्म की रात।
हाँ, वो रात जब इतिहास बन रहा था, और उसी रात सलीम की आया मैरी परेरा। वो एक ईसाई है और समाज में अमीर गरीब के भेद से काफी नाराज है। तो वो एक बहुत बड़ा कदम उठा लेती है।
क्या करती है वो?
वो अमीर सिनाई परिवार के नवजात बेटे सलीम को अस्पताल में ही एक गरीब हिंदू गायक वी विली विंके के उसी वक्त जन्मे बेटे शिवा से बदल देती है।
क्या? बच्चों की अदला बदली?
हाँ, बस एक अदला बदली। हाँ। और पूरी कहानी की दिशा ही बदल जाती है।
तो यहीं से दो जिंदगियां बिल्कुल अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं। सलीम, जो असल में गरीब घर का था, वो अमीर सिनाई परिवार में पलता है,
और शिवा, जो अमीर घर का वारिस था, वो गरीबी में।
ये अदला बदली किरदारों को कैसे घड़ती है, जरा मुख्य किरदारों पर बात करें। सलीम सिनाई तो है ही हमारा कथावाचक।
हाँ, सलीम, जिसके पास टेलीपैथी की शक्ति है, और वो अद्भुत नाक। हाँ। जो सब कुछ सूंघ लेती है, भावनाएं, रहस्य, यहां तक कि भविष्य की आहट भी।
वो खुद को इतिहास के केंद्र में देखता है।
हाँ, उसे लगता है भारत की कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि उसकी पहचान, उसका शरीर, सब बिखर रहा है, खंडित हो रहा है।
बिल्कुल वैसे जैसे शायद देश के सामने चुनौतियां आ रही थीं।
हाँ, एक तरह से। और शिवा, वो सलीम का बिल्कुल उलट है, है ना?
एकदम। शिवा जो गरीबी में पला, उसके पास शारीरिक ताकत है, उसके घुटने कहते हैं इतने मजबूत हैं कि वो कुछ भी कुचल सकता है।
बाप रे, वो जिंदगी की कठोर सच्चाई, हिंसा और मतलब यथार्थवाद का प्रतीक है। वो भारत का वो चेहरा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, आक्रामक, जिद्दी, कभी कभी क्रूर भी।
तो अगर सलीम दिमाग है तो शिवा शरीर।
हाँ, कह सकते हैं सलीम अगर सपना है तो शिवा हकीकत।
और वो दूसरे किरदार भी बहुत अहम है, दादा आदम अजीज।
हाँ, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसे हैं, जिनका विश्वास डगमगा गया है।
और मैरी परेरा, जिसने सब शुरू किया।
मैरी परेरा का किरदार बहुत मार्मिक है। उसका एक फैसला जो शायद गुस्से या
विद्रोह में लिया गया था। हाँ,
न जाने कितनी जिंदगियों को बदल देता है। वो जिंदगी भर उस राज के बोझ और अपराध बोध तले दबी रहती है।
ये दिखाता है कि कैसे एक आम इंसान का एक कदम भी इतिहास पर कितना गहरा असर डाल सकता है।
बिल्कुल।
तो उपन्यास की पहली किताब, जिसका नाम ही छेद वाली चादर है, वो इन किरदारों की दुनिया बनाती है। आदम का कश्मीर से बॉम्बे आना, अमीना अहमद की शादी, आज़ादी, अदला बदली।
हाँ, ये सब हमें उस माहौल में ले जाता है। सलीम का अमीर बचपन और शिवा का मुश्किल जीवन, ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास कहानी को आगे बढ़ाता है।
और इसी दौरान सलीम अपनी टेलीपैथिक शक्तियों को पहचानता है।
हाँ, और वो मिडनाइट्स चिल्ड्रंस कॉन्फ्रेंस यानी MCC बनाता है, एक मानसिक मंच जहाँ सारे जादुई बच्चे जुड़ते हैं, बातें करते हैं।
ये तो बड़ी उम्मीद जगाता होगा शुरू में।
बहुत, जैसे नया भारत अपनी सारी विविधताओं के साथ एक हो सकता है। ये एकता और संभावना का एक खूबसूरत सपना लगता है शुरुआत में।
लेकिन सपने हमेशा हकीकत में नहीं बदलते, खासकर इतिहास के उतार चढ़ाव में। दूसरी किताब, मछुआरे की इशारा करती उंगली, में कहानी कहाँ मुड़ती है?
दूसरी किताब में सलीम के बचपन और किशोरावस्था के साथ साथ भारत के शुरुआती दशकों की कहानी चलती है।
अच्छा।
बंटवारे के बाद सिनाई परिवार पाकिस्तान चला जाता है। वहाँ सलीम को भाषा और संस्कृति के वो फर्क महसूस होते हैं जो मुल्क को बांट रहे थे।
और उसके पिता अहमद सिनाई,
वो धीरे धीरे भ्रष्टाचार में धंसते जाते हैं। ये जैसे जैसे नए बने देशों में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैल रहा था, उसका आईना है।
और सलीम की शक्तियों का क्या होता है, MCC का क्या होता है?
वो कमजोर पड़ने लगती हैं जैसे जैसे सलीम बड़ा होता है, उसकी टेलीपैथिक शक्तियां घटती हैं, और MCC में भी बच्चों के बीच झगड़े, मतभेद, वो सब बढ़ने लगते हैं।
तो जैसे देश का शुरुआती जोश और आदर्शवाद फीका पड़ रहा था।
हाँ, कुछ वैसा ही। फिर एक दिन मैरी परेरा सालों बाद अदला बदली का वो भयानक राज खोल देती है।
ओहो, ये तो सलीम के लिए एक भूचाल जैसा रहा होगा। उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद ही
बिल्कुल
हिल गया।
बिल्कुल, उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है, परिवार बिखर जाता है।
और फिर
आता है 1965 का भारत पाक युद्ध। एक बम धमाके में सलीम का परिवार मारा जाता है और वो अपनी याददाश्त खो बैठता है।
एमनेजिया, याददाश्त चली गई।
हाँ, ये सिर्फ उसकी याददाश्त का जाना नहीं है, ये जैसे जैसे राष्ट्रीय सदमे का प्रतीक है, जैसे देश भी अपने इतिहास के कुछ कड़वे सच भूल जाना चाहता है।
यहाँ ये विखंडन मतलब फ्रैगमेंटेशन का थीम बहुत गहरा जाता है ना?
बिल्कुल। व्यक्तिगत स्तर पर सलीम टूट रहा है, परिवार बिखर गया, और राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और झगड़े देश को तोड़ रहे हैं।
वो शुरुआती सपना जैसे चकनाचूर हो रहा है, सलीम का याददाश्त खोना ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली रूपक है।
हाँ, याददाश्त खोने के बाद वो क्या करता है? अपनी सूंघने की बेमिसाल ताकत के कारण।
अच्छा, वो शक्ति बच जाती है।
हाँ, सूंघने की शक्ति और मजबूत हो जाती है, तो वो पाकिस्तानी फौज में इंसानी खोजी कुत्ता बन जाता है।
क्या?
और इसी भूमिका में वो 1971 के बांग्लादेश युद्ध की विभीषिका को बहुत करीब से देखता है। वो सारी हिंसा, मारकाट, ये अनुभव उसे और तोड़ देता है।
ये तो बहुत ही त्रासद है।
हाँ, और ये बिखराव तीसरी किताब बुद्ध में और बढ़ता है। युद्ध के बाद सलीम किसी तरह वापस भारत आ जाता है, दिल्ली में।
दिल्ली में कहाँ?
पुराने किले के पास जादूगरों की एक बस्ती में पना लेता है, और वहां उसकी मुलाकात होती है पार्वती द विच से।
पार्वती, एक और दिलचस्प किरदार, वो कैसी है?
पार्वती एक सड़क जादूगरनी है। उसके पास सचमुच की जादुई शक्तियां हैं। वो सलीम से प्यार करने लगती है।
अच्छा,
कहानी में एक और पेच आता है, जब पार्वती शिवा के बच्चे की मां बनती है।
शिवा के?
हाँ, लेकिन शादी वो सलीम से करती है। एक पल के लिए लगता है कि शायद अब सलीम को एक परिवार, एक ठिकाना मिल जाएगा, एक छोटी सी उम्मीद।
लेकिन रुश्दी की दुनिया में उम्मीदें अक्सर ज्यादा देर टिकती नहीं, खासकर जब कहानी आपातकाल इमरजेंसी के दौर में पहुंचती है।
बिल्कुल सही। कहानी का चरमोत्कर्ष आता है आपातकाल की घोषणा के साथ, जिसे उपन्यास में अनाम विधवा, द विडो कहा गया है,
जो साफ तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्रतीक है।
हाँ, विधवा को लगता है कि ये आधी रात की संतानें अपनी जादुई शक्तियों और अपनी आजाद सोच के साथ उसकी सत्ता के लिए खतरा हैं।
तो वो क्या करती है?
उन्हें खत्म करने की कोशिश।
हाँ, एक तरह से वो एक क्रूर अभियान शुरू करती है, इन सभी बच्चों को ढूंढना, पकड़ना और उनकी नसबंदी कर देना।
नसबंदी?
हाँ, रुश्दी इसके लिए एक शब्द गढ़ते हैं, स्पेरेक्टमी। ये सिर्फ शारीरिक नसबंदी नहीं है, ये उनकी उम्मीदों, उनकी शक्तियों, उनके भविष्य को छीन लेने का प्रतीक है।
ये तो बहुत ही भयानक चित्रण है। राज्य का अपनी ही संतानों को नष्ट करना, ये आजादी के वादे के साथ एक बड़े विश्वासघात जैसा लगता है। हाँ, ये उपन्यास का सबसे स्याह दौर है। विधवा यहाँ निरंकुश सत्ता का प्रतीक बन जाती है।
और इसी दौरान पार्वती का क्या होता है?
इसी उथल पुथल में पार्वती के दुखद मौत हो जाती है। सलीम खुद पकड़ा जाता है, और दुख की बात यह है कि उसकी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल
दूसरे बच्चों को पकड़वाने के लिए किया जाता है।
हाँ, और आखिर में उसकी भी नसबंदी कर दी जाती है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है।
आपातकाल हटने के बाद क्या होता है? सलीम का क्या बनता है?
आपातकाल खत्म होने पर सलीम रिहा होता है, और हम उसे फिर वहीं पाते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी,
अचार की फैक्ट्री में।
हाँ, पद्मा को अपनी कहानी सुनाते हुए। ये कहानी सुनाने का जो काम है, जिसे वो चटनीफिकेशन कहता है।
हाँ, ये चटनीफिकेशन का आइडिया बहुत दिलचस्प है। जैसे अचार बनाकर हम चीजों को बचा लेते हैं।
बिल्कुल, वैसे ही सलीम अपनी यादों को, इतिहास को कहानी के जरिए बचाने की कोशिश कर रहा है। ये भूलने के खिलाफ, इतिहास को मिटाने की कोशिशों के खिलाफ एक तरह का प्रतिरोध है।
यादों को सहेजना, उन्हें एक रूप देना।
हाँ, लेकिन इतिहास का बोझ इतना ज्यादा है कि उसका शरीर उसे झेल नहीं पा रहा। वो सचमुच दरक रहा है, टूट रहा है।
और उपन्यास का अंत कैसा है? क्या उसे कोई सुकून मिलता है? या
अंत बहुत बहुत मार्मिक और खुला हुआ सा है। कहानी सुनाने के बाद सलीम एक बहुत बड़ी भीड़ में जैसे खो जाता है, विलीन हो जाता है।
भीड़ में?
हाँ, उसका शरीर लिखा है कि 60 करोड़ धूल के कणों में बिखर जाता है, जैसे वो इस विशाल देश भारत में ही मिल गया हो।
तो ये अंत एक साथ विनाश भी है और
विलय भी।
हाँ,
बिल्कुल, दोनों का एहसास देता है।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला अंत है। एक व्यक्ति जो पूरे देश का रूपक था, वो अंत में उसी देश की मिट्टी में मिल जाता है। और पद्मा जो पूरी कहानी सुनती है।
हाँ पद्मा, वो शायद हम सब हैं, पाठक या आम जनता, जो इन बड़ी बड़ी कहानियों को चुपचाप सहती और सहेजती रहती है।
अच्छा, अगर हम उपन्यास के मुख्य विषयों को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे?
सबसे बड़ा थीम तो है व्यक्तिगत और राजनीतिक का रिश्ता। सलीम की जिंदगी भारत की कहानी है, और भारत की कहानी सलीम की।
और पहचान का सवाल, मैं कौन हूँ, वो अदला बदली, याददाश्त खोना, खंडित पहचान।
हाँ, ये सब उसी सवाल से जूझते हैं। फिर इतिहास और स्मृति का सवाल।
हाँ, क्योंकि सलीम तो खुद कहता है कि उसकी याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, रुश्दी दिखाते हैं कि इतिहास कोई एक सीधी सच्ची कहानी नहीं है, ये व्यक्तिपरक है, यादों से, भूलने से, कहने वाले के नजरिए से बनता है।
सलीम एक अविश्वसनीय कथावाचक है।
हाँ, जो हमें इतिहास की प्रकृति पर ही सवाल उठाने को कहता है। फिर शक्ति और भ्रष्टाचार का थीम है, कैसे आदर्श टूटते हैं, कैसे सत्ता निरंकुश होती है, खासकर आपातकाल के चित्रण में।
और वो भाग्य बनाम मर्जी वाला द्वंद्व भी है, क्या सब पहले से तय है या मेरी पेरेरा जैसे लोगों के छोटे छोटे फैसले इतिहास बदल देते हैं।
सही कहा। और आखिर में विखंडन और एकता का थीम, बंटवारा, सलीम का टूटता शरीर, एमसीसी का नाकाम होना, ये सब दिखाता है कि इतने विविध देश को एक साथ रखना कितना मुश्किल है। बिखराव का खतरा हमेशा बना रहता है।
और ये सब रश्दी अपनी अनोखी शैली में कहते हैं, जादुई यथार्थवाद, रूपकों का इस्तेमाल, वो नाक, चादर, अचार।
हाँ, वो चटपटी चटनीफाइड भाषा और कहानी कहने का वो बिखरावा, लेकिन लुभावना अंदाज, जैसे कोई किस्सा सुना रहा हो।
कुछ पंक्तियां तो हैं जो जहन में रह जाती हैं, जैसे वो कहते हैं, दोबारा जन्म लेने के लिए पहले मरना पड़ता है।
हाँ, इसमें कितना विरोधाभास और कितनी सच्चाई है। बदलाव के लिए विनाश जरूरी है।
और सलीम का वो कहना, मुझे समझने के लिए तुम्हें एक पूरी दुनिया निगलनी होगी।
ये न सिर्फ सलीम की जटिल पहचान बताता है, बल्कि उपन्यास के विशाल दायरे का भी अंदाजा देता है।
हाँ, और सलीम के शरीर का वो दरकना, इतिहास का बोझ कितना शारीरिक हो सकता है, और बेशक चटनीफिकेशन, यादों को बचाने की कला।
ये उपन्यास पढ़ना भावनाओं के एक तूफान से गुजरने जैसा है। इसमें हैरत है, दुख है, व्यंग्य है, त्रासदी भी है।
रुश्दी इतिहास जैसी बड़ी अमूर्त चीज को सलीम की कहानी के जरिए इतना निजी, इतना महसूस करने लायक बना देते हैं।
हाँ, और ये इतिहास को देखने का नजरिया बदल सकता है। इतिहास सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं है, वो लोगों की जिंदगियां हैं, उनकी यादें हैं, उनके संघर्ष हैं।
और ये याद दिलाता है कि यादें कितनी नाजुक होती हैं और उन्हें कहानी के जरिए बचाना कितना जरूरी है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के इतिहास से कितनी गहराई से जुड़ा हो सकता है,
और कैसे यादें, चाहे कितनी भी टूटी फूटी या अविश्वसनीय क्यों ना लगे, वही हमें बनाती हैं। कहानी कहना अपने आप में एक ताकत है, खासकर तब जब सच को दबाने या भूल जाने की कोशिशें हो रही हों।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।